Hey, what's up, podcast listeners? I hope you're doing absolutely fine. This is your host, Himanshu Bisht, and I'm a certified professional in the field of nutrition and fitness. So I'm back with another podcast episode in which I'll be talking about what is muscle imbalance, how does it happen, and what all can you do to fix your muscle imbalance. So पहले ये देख लेते हैं कि muscle imbalance होता क्या है. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब muscles का balance खराब हो जाता है, उसे ही हम muscle imbalance कहते हैं. और आपने नोटिस भी करा होगा कि कई बार आपका एक बाइसेप आपके दूसरे बाइसेप से थोड़ा छोटा होता है, और वैसे ही एक साइड चेस्ट की आपकी थोड़ी बड़ी होती है दूसरी साइड से. तो इसे ही मसल इम्बैलेंस कहते हैं. अब ये तो हो गया पहले टाइप का मसल इम्बैलेंस, जिसमें एक साइड ऑफ मसल आपकी दूसरी साइड ऑफ मसल से थोड़ी बड़ी या छोटी है. अब दूसरे टाइप का मसल इम्बैलेंस है, वो रिलेटेड है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल से रिलेटेड. अब पहले मैं समझा देता हूँ कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल क्या होती है. तो एगोनिस्ट मसल को एक हम प्राइमरी मसल मान सकते हैं, जो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसी समय एंटागोनिस्ट मसल होती है, जो वो समय रिलैक्स होती है. अब आपको अगर ये समझ नहीं आया तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ. कंसीडर करो बाइसेप और ट्राइसेप मसल को. बाइसेप और ट्राइसेप एंटागोनिस्ट पेयर्स हैं. तो जब भी हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेन एवर वी आर लिफ्टिंग आर आर्म अप, तो उस समय हमारा ट्राइसेप रिलैक्स होता है. मतलब जिसमें बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्राइसेप रिलैक्स हो रहा है. तो ये एक एग्जांपल है एंटागोनिस्टिक पेयर का, जिसमें एक मसल एगोनिस्ट है और दूसरी एंटागोनिस्ट. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इससे. तो सपोज करो कोई पर्सन जो बाइसेप बहुत ट्रेन करता है लेकिन ट्राइसेप को ऑलमोस्ट नेगलेक्ट करता है. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट हिज बाइसेप मसल विल ग्रो बिग, हाउएवर हिज ट्राइसेप मसल विल नॉट ग्रो, विच क्रिएट्स अ मसल इम्बैलेंस. एक और एग्जांपल देता हूँ. सपोज कोई पर्सन फ्रंट बॉडी पार्ट्स बहुत ट्रेन करता है, जैसे कि चेस्ट और शोल्डर्स, बट अपनी पोस्टीरियर चेन को वो कम्प्लीटली नेगलेक्ट करता है. पोस्टीरियर चेन मतलब रियर डेल्टॉइड्स या बैक एक्सेट्रा. तो ऐसे केस में होगा क्या कि उस इंसान का फ्रंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग और हैवी हो जाएगा कि उसकी फ्रंट साइड डोमिनेट करेगी, और उससे होगा क्या कि उस पर्सन की बॉडी आगे की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट उसका बहुत हैवी हो चुका है एज़ कम्पेयर टू हिज बैक पार्ट. और इससे मसल इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पोस्चुरल डिफॉर्मिटी भी हो जाती है कई बार, जिसे कहते हैं जैसे कि स्कोलियोसिस. अब जो तीसरा टाइप है मसल इम्बैलेंस का, वो रिलेटेड है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑन विच एवरी पर्सन शुड फोकस ऑन. तो हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो ओरिजिनेट होता है हमारे ब्रेन के बीचों बीच से, एंड देन इट फ्लोज डाउन टू अवर स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन वहाँ से वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है. सो CNS का काम क्या है? सो CNS का बेसिकली जो काम होता है वो होता है बॉडी के लिए एनर्जी जनरेट करना. एंड सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू इन बिटवीन, लेकिन मैंने CNS की बात पहले भी एक पॉडकास्ट में की थी, जिसका नाम था डाउन साइड्स ऑफ ट्रेनिंग बाइसेप एंड ट्राइसेप टुगेदर. सो यू कैन लिसन टू दैट पॉडकास्ट एपिसोड फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट. हाँ, तो वापस आ जाता हूँ मैं. अब तो मैं कह रहा था कि CNS का मेन काम होता है एनर्जी जनरेट करना बॉडी के लिए, और उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बॉडी के. अब आप सोच रहे हो यार कैसे मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है इससे. तो जैसे कि मैंने बताया ही कि एनर्जी फ्लो करती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड में. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की जो सबसे पहली वर्टिब्री होती है, जिसे हम एटलस भी कहते हैं, अगर उसकी पोजीशन कभी ऊपर नीचे हो जाए या वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, तो उससे इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता. मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी लेफ्ट साइड और राइट साइड में 50-50%, लेकिन अगर आपकी एटलस की पोजीशन ऐसे चेंज हो गई तो वो क्या करेगा कि आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा. तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड और राइट साइड में 50% नहीं होगी, एंड इट कैन चेंज टू मे बी 60% ऑन वन साइड एंड 40% ऑन अनदर साइड. मतलब लेफ्ट साइड में सपोज आपकी 40% ही जा रही है और राइट साइड में 60% ही जा रही है, तो ये तो होने ही वाला है ना कि आपका बाइसेप लेफ्ट साइड वाला कम होगा और राइट साइड वाला थोड़ा बड़ा होगा. तो जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल हो गया तो मसल इम्बैलेंस तो होना ही होना है. जिस साइड ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही होगी बॉडी में, वो मसल या ऑर्गन ज़्यादा ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू द मसल और ऑर्गन जिस तरफ कम एनर्जी फ्लो हो रही है. नाउ इफ दिस इज द रीजन ऑफ योर मसल इम्बैलेंस, अगर आपका मसल इम्बैलेंस CNS की वजह से हो रहा है, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपके उसमें बराबर नहीं है लेफ्ट और राइट साइड में, तो आप कितने भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी स्ट्रेचिंग कर लो, आपका मसल इम्बैलेंस इससे ठीक नहीं होने वाला. इसे आप दोबारा सुन लो कि अगर आपका मसल इम्बैलेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से है, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है बॉडी में, तो आपका मसल इम्बैलेंस ठीक नहीं होने वाला किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज से. तो इस केस में फिर क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको जाना पड़ेगा या तो डॉक्टर या ऑर्थो के पास, और वही आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। और ये जो CNS वाली प्रॉब्लम है जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप पता कैसे कर सकते हो? आपको ये वैसे ही पता चल जाएगा कि आपको CNS वाली प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपका एक साइड वाला मसल बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड, मतलब आपको नेकेड आई से पता चल रहा है डिफरेंस अपने राइट बाइसेप या लेफ्ट बाइसेप में, या राइट चेस्ट या लेफ्ट चेस्ट में, तो फिर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 टाइप की मसल इम्बैलेंस बताई थी, जिसमें से मैंने आपको तीसरे टाइप की यानी CNS वाले टाइप का ये बता दिया कि ये कैसे होता है और क्यों होता है और इसके क्या करना चाहिए। बट वट अबाउट द फर्स्ट 2 केसेज जिसमें आपको CNS वाली प्रॉब्लम नहीं है? तो मैं उन 2 केस का बता देता हूँ कि वो होते क्यों हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसे आप फिक्स कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले में आप एक्सरसाइज से उसे फिक्स नहीं कर सकते, यू डेफिनेटली नीड टू सी एन ऑर्थो। अब मैं पहले रीज़न बता देता हूँ जो फर्स्ट 2 केस थे उनका। इफ़ यू आर ऑलवेज यूजिंग वन पर्टिकुलर हैंड फॉर लिफ्टिंग एनीथिंग और दूसरे आर्म का आप उतना यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी मसल इम्बेलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप एक साइड वाले आर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और दूसरे को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, मतलब वो बेसिकली अनयूज्ड ही है, तो इसमें आपका मसल इम्बेलेंस हो सकता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि ये पहले 2 टाइप हैं जो मसल इम्बेलेंस के, ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन होते हैं लोगों में, बहुत सारे लोगों में देखे जाते हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ये कर सकते हो कि जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है या जिसको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, आप उसे यूज़ में ला सकते हो, तो इससे आपका मसल इम्बैलेंस ठीक हो सकता है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी फिक्स से ठीक हो जाता है। अगर आप इसमें सही से यूज़ करोगे अपने दोनों हैंड तो ये ठीक होने वाला है। अब जो दूसरा रीज़न हो सकता है मसल इम्बैलेंस का, वो हो सकती है आपकी इनकरेक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। मतलब अगर आपका फॉर्म इनकरेक्ट है कोई भी एक्सरसाइज करते समय, तो भी मसल इम्बैलेंस हो सकती है। सपोज़ यू आर डूइंग बेंच चेस्ट प्रेस, और बेंच चेस्ट प्रेस में आप रॉड उठा रहे हो और आपको दिख रहा है कि आप रॉड टेढ़ी मेढ़ी उठ जा रही है आपकी, मतलब एक साइड से आप ज़्यादा वेट पुश कर रहे हो ऊपर को और दूसरे साइड से कम, तो इससे तो मसल इम्बैलेंस हो गई होगा, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका जो हैंड्स हैं वो बराबर वेट नहीं उठा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आप यूनिलैटरल एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि डंबल प्रेस कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ रॉड प्रेस, मतलब बारबेल प्रेस होती है जो, उसकी जगह आप डंबल का यूज़ कर सकते हो। वैसे बाइसेप कर्ल में आप रॉड की जगह डंबल बाइसेप कर्ल कर सकते हो, तो इसमें क्या होगा कि आप एक एक हाथ से, मतलब दोनों हाथों में आपके वेट होगा, तो आपको दोनों से उठाना पड़ेगा वेट। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक हाथ से अगर ज़्यादा वेट पुश कर रहे हो तो दूसरा भी उठ जाएगा, इसमें आपको सिंगल सिंगल हैंडेडली ही करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, तो ये आपका मसल इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी वीक आर्म है, सपोज आपका राइट आर्म था वो वीक है, तो उससे आप 2-3 रेप ज़्यादा कोशिश करो कि 2-3 रेप ज़्यादा निकल जाएं, तो इससे आपका मसल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये रिलेटेड नहीं है, और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आगे जाके तो आपका ये मसल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी फॉर्म है वो गलत ना हो, आपको अपनी फॉर्म चेक करनी है। आप अपनी फॉर्म चेक कर सकते हो किसी स्पॉटर की मदद से, कि आपने किसी इंसान को खड़ा कर दिया अपने सामने और उससे पूछ रहे हो कि मेरी फॉर्म सही है गलत है, या आप अपनी वीडियो बना सकते हो, या सबसे सिंपल आप ये कर सकते हो कि आप मिरर के आगे एक्सरसाइज करो, आप मिरर में देखो कि मेरा फॉर्म सही हो भी रहा है या नहीं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, अपना फॉर्म ठीक करोगे, तो आपका मसल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे रीज़न पे। तो तीसरा रीज़न ये है कि इफ़ यू आर कम्प्लीटली नेग्लेक्टिंग योर एनी पर्टिकुलर मसल ग्रुप, तो भी मसल इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में। मतलब अगर आप कोई भी मसल ग्रुप है उसको आप कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हो सपोज़, तो मसल इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि आप वाली मसल को ट्रेन कर ही नहीं रहे हो, वाली मसल आपकी स्ट्रांग है ही नहीं। सो ट्रेन एवरी सिंगल मसल इन ऑर्डर टू अचीव बैलेंस्ड फिजिक। सो दीज वर बेसिकली मेन पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता था मसल इम्बैलेंस से रिलेटेड। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया हो, क्योंकि मुझे एक ने पूछा भी था कि मसल इम्बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मसल इम्बैलेंस ठीक हो सकती है। सो दिस वॉज प्रिटी मच इट फॉर दिस पॉडकास्ट एपिसोड। एंड इफ़ यू आर अ वीडियो पर्सन, मतलब अगर आप ऑडियो नहीं सुनते हो, ऑडियो पॉडकास्ट नहीं सुनते हो, देन मे बी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड विल अपलोड ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट। Until next time, it's goodbye. Cheers.